व्यवस्था विवरण अध्याय 17। अब तक के अध्ययन से आप ये समझ चुके होंगे कि व्यवस्था विवरण एक प्रकार से इसराइल का न्यायिक पुनरावलोकन है। व्यवस्था विवरण के लिए जो अंग्रेजी शब्द काम में लिया गया है वो वास्तव में यूनानी भाषा से आया है, जिसका अर्थ है दूसरी व्यवस्था। ये विवरण मूसा ने इसराइल की प्रजा के लिए विशेष करके दोहराया है, क्योंकि मूसा अब इस संसार से कूच करने वाला है। अतः ये मूसा का अंतिम संदेश है। उसके बाद यहोशू इसराइल के वंशजों को प्रतिज्ञा के देश में मार्गदर्शन एवं अगुवाई देगा। ये वास्तव में व्यवस्था का दूसरी बार पढ़ा जाना है। अध्याय 17 में वो एक बार फिर स्पष्ट करता है कि वे जो परमेश्वर को देते हैं वो बचा हुआ या निकम्मी वस्तु ना दे, बलि का पशु ऐसा ना हो जिसमें दोष हो, परमेश्वर को ऐसा दान देने से जो हमारे काम का नहीं है उसका अपमान होता है। यदि हमारे बलिदान की चुबन हमें लगे तो परमेश्वर उससे सम्मानित होता है। पहला इतिहास 21 में दाऊद ने बड़ा अच्छा उदाहरण रखा है। उसने परमेश्वर के स्वर्गदूत द्वारा लाई गई महामारी को रोकने के लिए अर्नोन का खेत मोल लेना चाहा। तब अर्नोन ने कहा, मैं तुझे भूमि और बलि का बछड़ा भी देता हूं। परंतु दाऊद ने उत्तर दिया, सो नहीं, मैं आवश्यक इसका पूरा दाम ही देकर इसे मोल लूंगा जो तेरा है। उसे मैं यहोवा के लिए नहीं लूंगा और ना सेत मेत का होम बलि चढ़ाऊंगा। पहला इतिहास 21, 23 और 24 पर। दाऊद को परमेश्वर के मन का व्यक्ति कहा गया है। मेरा अपना विचार भी यही है कि जब हम परमेश्वर को ऐसा दान देते हैं जिसकी कीमत हमने चुकाई है तो वो सम्मानित होता है, अन्यथा हमारा दान वास्तव में भेंट नहीं कहा जाएगा। मरकुस 12:43 में यीशु बैठकर देख रहा था कि लोग अपना अपना दान परमेश्वर को चढ़ा रहे थे। वहां एक वृद्ध महिला भी आई जिसने अपनी एकमात्र दमड़ी परमेश्वर को दान कर दिया। यीशु ने कहा कि उसका दान सबसे उत्तम दान है, सच्चा दान है। अन्य सब अपनी बहुतायत में से दे रहे थे, परंतु उस महिला ने अपनी जीविका में से दान दिया था। अतः जब हम परमेश्वर को दान दे तो वो हमारी अनावश्यक वस्तु न हो। तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए कोई बैल या भेड़ बकरी बलि न करना जिसमें दोष व किसी प्रकार का खोट हो, क्योंकि ऐसा करना तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप घृणित है। व्यवस्था विवरण 17:1। व्यवस्था के संबंध में वे अति नियम निष्ठ थे, क्योंकि परमेश्वर उस राष्ट्र को अलग ही रखना चाहता था। वो जानता था कि यदि जरा सी चूक हुई तो विनाश का बीज डल जाएगा। इतिहास में आप देखेंगे कि अधिकांश साम्राज्य पराजित होकर नाश नहीं हुए, परंतु आंतरिक भ्रष्टाचार के कारण उनका विनाश हुआ। किसी भी राष्ट्र के आधार स्तंभ सदाचार, न्याय, निष्पक्षता आदि होते हैं, और यदि यही भ्रष्ट हो जाते हैं तो कुछ समय बाद राष्ट्र अपने आप ही नष्ट हो जाता है। इन विनाशकारी बातों में एक बात जिससे परमेश्वर इसराइल की सुरक्षा करना चाहता था वो थी मूर्ति पूजा, जिसका दंड था उपासक का पथराव किया जाना। जो बस्तियां तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, यदि उनमें से किसी में कोई पुरुष व स्त्री ऐसी पाई जाए जिसने तेरे परमेश्वर यहोवा की वाचा तोड़कर ऐसा काम किया हो जो उसकी दृष्टि में बुरा है, अर्थात मेरी आज्ञा उल्लंघन करके पराए देवताओं की या सूर्य या चंद्रमा या आकाश के गण में से किसी की उपासना की हो या उनको दंडवत किया हो। व्यवस्था विवरण 17 दूसरा और तीसरा पद। आरोपों की जांच की जाए और दो या तीन साक्षियां यदि उस आरोप को स्थापित कर दें तो आरोपी को प्रजा पत्तरवाह कर दे, परंतु यदि साक्षी एक ही है तो आरोपी दंड से मुक्त रहे। यदि कोई विषय न्यायपालकों की समझ में न आए तो वे याजक के पास अपनी समस्या लेकर आए। लेवीय याजकों के पास और उन दिनों के न्यायियों के पास जाकर पूछपाछ करना कि वे तुमको न्याय की बातें बतलाएं। व्यवस्था विवरण 17 का 9 पद। यहां परमेश्वर फिर से कहता है कि वो उस देश में एक स्थान चुनेगा जहां वे परमेश्वर से भेंट करने और आराधना करने आएंगे। पद 14 बड़ा रोचक पद है क्योंकि इसमें परमेश्वर उनके धार्मिक पतन की भविष्यवाणी कर रहा है। परमेश्वर चाहता था कि इसराइल राष्ट्र पर उसका शासन हो और संसार में वो एक अलग प्रकार का ही राज्य हो। संसार में राष्ट्रों पर राजा राज करते थे, शासक प्रभुता करते थे या प्रजातंत्र करते थे, परंतु इसराइल का राष्ट्र इन सब से अलग परमेश्वर का राज्य होना था। संपूर्ण पृथ्वी पर उनकी सरकार अलग ही हो और अद्वैत हो। उनका राजा संसारिक नहीं परंतु परमेश्वर स्वयं हो। परमेश्वर जानता था कि ये लोग एक दिन मानवीय राजा मांगेंगे। उस समय तो वे परमेश्वर के आदर्शों पर चल रहे थे और किसी राजा के अधीन नहीं थे, परंतु एक समय ऐसा आएगा जब वे परमेश्वर के आदर्शों पर नहीं चलेंगे और एक राजा की मांग करेंगे। यही कारण है कि परमेश्वर आरंभ में ही राजा से संबंधित नियम बना दिए थे। राजा तो लगभग 400 वर्षों के बाद नियुक्त किया गया, परंतु उनका स्वभाव जानते हुए परमेश्वर ने पहले ही उसे संबंधित नियम बना दिए कि जब उन पर राजा राज करे तो वो भी नियमों के अधीन हो। और आगे चलकर शमूएल के सामने इसराइल ने अपनी ये मांग रख दी कि उन्हें भी अन्य जातियों के सदृश राजा चाहिए। अतः परमेश्वर ये पहले से ही जानता था कि एक दिन वे संसारिक राजा की मांग करेंगे। हम देखते हैं कि इसराइल की प्रजा ने शमूएल के पास आकर निवेदन किया कि वो उन्हें एक राजा दे जो अन्य जातियों की नाई उन पर राज करे। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जब तू उस देश में पहुंचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है और उसका अधिकारी हो और उनमें बसकर कहने लगे कि चारों ओर की सब जातियों की नाई मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा, तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले अवश्य उसी को राजा ठहराना। अपने भाइयों ही में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। किसी परदेशी को जो तेरा भाई ना हो तू अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता। व्यवस्था विवरण 17, 14 और 15 पर। राजा के लिए नियम ये थे। सबसे पहला कि वो अपने लिए घोड़े एकत्रित ना करें। दूसरा, वो मिस्र के साथ घोड़ों का व्यापार ना करें। तीसरा नियम, अपने लिए पत्नियों की भीड़ जमा ना करें कि वे उसका मन परमेश्वर से विमुख कर दें। बड़ी रोचक बात तो ये है कि सुलेमान राजा ने तीनों नियम तोड़ दिए थे। उसने अपने लिए बहुत घोड़े रखे थे। उनके अस्तबल आज भी इसराइल में खोजना शेष है। उसने मिस्र के साथ घोड़ों का व्यापार भी किया। परमेश्वर ने कहा था, अनेक रानियां रखने से वे राजा का मन परमेश्वर से दूर कर देंगी, और सुलेमान ने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया जिसके परिणाम स्वरूप उसका मन परमेश्वर से भटक गया। परमेश्वर इस बुराई को देख रहा था, वो इसका परिणाम भी देख रहा था। इस कारण वो पहले से ही चेतावनी दे चुका था, परंतु सुलेमान ने नहीं माना और परमेश्वर ने जो कहा था वही हुआ। दूसरे शब्दों में परमेश्वर जानता है कि वो क्या कह रहा है। हम सोचते हैं कि हम उसे अधिक जानते हैं। ये तो मेरे लिए नहीं है, मैं यदि ऐसा करूं तो मुझ पर असर नहीं होगा। दूसरे परमेश्वर को भूल सकते हैं, मैं तो नहीं भूलूंगा। और हम मान लेते हैं कि मुझे परमेश्वर के नियमों से छूट है। ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने नियम स्थापित कर दिए हैं और नियम तोड़ने का दंड भी। आप शायद ये सोचे कि आप बच जाएंगे। नहीं, आप बच नहीं सकते। आप ये निश्चित जान ले कि परमेश्वर ने कहा है वो पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर निरर्थक चेतावनी नहीं देता है। परमेश्वर आपको उसी बात की चेतावनी देता है जिसमें आज्ञा के उल्लंघन का संकट आप पर मंडरा रहा हो। परमेश्वर ने चेतावनी दी, सुलेमान ने अवज्ञा की और उसके जीवन में भी परमेश्वर का कहा ज्यों का त्यों पूरा हुआ। राजा को अपने लिए व्यवस्था की पुस्तिका अलग से रखनी होती थी कि प्रतिदिन उसे पढ़े। इस पुस्तक को वो खुद अपने हाथों से लिखे, जिससे कि एक एक नियम उसे स्मरण हो जाए। जब मूसा ने यहोशू को कार्यभार सौंपा था, तब उसने उसे व्यवस्था की पुस्तक दी और कहा, तू यत्न से व्यवस्था को मानना, तू उस पर मनन करना, तो इस प्रकार तू अपने मार्गों को समृद्ध बनाएगा और अच्छी सफलता पाएगा। दाऊद ने यहोवा की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करने में अपना आनंद व्यक्त किया है। वो परमेश्वर के मन का मनुष्य था, क्योंकि वो राजा होते हुए भी परमेश्वर के वचन को सर्वोपरि मानता था। परमेश्वर दाऊद जैसा ही राजा चाहता था। परमेश्वर को एक चरवाहा राजा चाहिए था। परमेश्वर चाहता था कि वहां एक चरवाहे का राज हो। वो सब शासकों में चरवाहे का हृदय चाहता था। दाऊद में चरवाहे का वो हृदय था। वो परमेश्वर के लोगों से प्रेम करता था, उनकी आवश्यकताओं के प्रति जागरूक था, वो उनकी सुधि लेता था, वो उनके लिए भोजन का प्रबंध करता था। अतः परमेश्वर चाहता था कि उनका राजा अपने हाथों से अपने लिए व्यवस्था की प्रतिलिपि तैयार करें और उसे पढ़े। यहां वो फिर कहता है कि लेवियों को जमीन का हिस्सा नहीं मिलेगा, वे परमेश्वर को चढ़ाए हुए बलिदानों को अपने उत्तराधिकार के रूप में खाया करेंगे, क्योंकि परमेश्वर उनका उत्तराधिकार है। अतः जब याजक बलि चढ़ाएंगे, तब उपासक बलि के पशु का कंदा और दोनों गाल और जोज, जबड़ा और गला याजक को दे।